सर तो सबसे पहले जैसे हमने बाकी सबसे बात की कि उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं डाइट में, तो एज अ प्रिंसिपल आपकी क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं?
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इंस्टीट्यूशन के हेड, जो भी डाइट के फंक्शंस हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो हमारी है। अब डाइट का मुख्य काम तो ये है कि पूरे जिले को एकेडमिक सपोर्ट देना, उनकी गुणवत्ता में, प्राथमिक शिक्षा में जो भी इनपुट्स देने हैं, जो भी सपोर्ट्स देने हैं, डाइट ही देती है। और इसके लिए डाइट्स के अलग अलग कुछ विभाग बने हुए हैं, छह, जैसे कल आप लोगों के साथ डिस्कशन हुआ होगा, तो उसके हेड है और उसके माध्यम से काम करता है। तो मुख्यतः जो अभी इस समय काम हम लोगों के हो रहे हैं वो एक तो प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर्स की कमी है। तो प्री सर्विस ट्रेनिंग तो हमारे पास हमेशा चलती रहती है। अब इस समय हमारे दो सेमेस्टर के बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, जो थर्ड सेमेस्टर में बच्चे जा रहे हैं, अभी उनके एग्ज़ाम भी हैं, तो ये तो हमेशा चलता रहता है। रही इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग की बात, तो वो हमें जब जब कोई डायरेक्शंस मिलता है विभाग से, एस सी आर टी से, तो हम ट्रेनिंग हम लोग अरेंज करते हैं। तो नीड बेस्ड भी होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, चूँकि हमारे पास पूरी टीम है एकेडमिक लेक्चरर्स की, तो वो हम उनको नीड बेस्ड भी ट्रेनिंग देते हैं, और जब भी कोई डायरेक्शन हमें होते हैं ये ट्रेनिंग देनी है तो वो फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं।
तो सर जैसे आपने अभी चैलेंजेस की बात की, तो किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं एज अ वर्किंग ऑफ अ प्रिंसिपल?
चैलेंजेस बहुत हैं। चैलेंजेस तो पहले तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंज हैं, अभी जितने होने चाहिए आइडियल डाइट में उतने नहीं हैं। हालांकि धीरे 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 वो सब चीज़ें दूर हो रही है, लेकिन अभी भी उसके चैलेंजेस हैं। दूसरी प्रॉब्लम्स फील्ड की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है वो तो होती है। तीसरा हमारा डाइट का कोऑर्डिनेशन बीएसए से सबसे ज़्यादा रहता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी से। बीएसए का पद एक जिले का प्रशासनिक पद होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव। डाइट पूरा एकेडमिक है, डाइट के पास कोई इस तरह के प्रशासनिक उस तरह के पद नहीं है, तो एक कोऑर्डिनेशन की भी प्रॉब्लम दोनों के बीच में रहती है, क्योंकि बीएसए को इतना ज़्यादा वर्क प्रशासनिक रहता है कि फिर वो डाइट से फिर एकेडमिक सबको उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते, ना ध्यान देने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी कमी है, तो उसकी वजह से भी इसमें चैलेंजेस आते हैं। मसलन हम लोग की एआरपीज़ हैं, एक एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हर ब्लॉक में 5 एआरपीज़ हैं, उनके हर मंथ हम लोग मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग में हम डिस्कस करते हैं कि फील्ड में क्या, किसी स्कूल में कोई अच्छी चीज़ें हो रही हैं, कोई किसी टीचर ने कोई इनोवेशन कर रखा है, या कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो बच्चों पे फ़र्क पड़ता है, तो वो बताएं। क्योंकि एक एआरपी को एक माह में लगभग 30 सपोर्टिव सुपरविज़न करने होते हैं। अच्छा। हमारे लेक्चरर्स को भी 10 का कोटा है कि 10 ये सपोर्टिव सुपरविज़न एक माह में करेंगे। इस हिसाब से देखें तो एक माह में पूरे स्कूल का इंस्पेक्शन लगभग हो जाता है, कुछ डबलिंग होता है, ट्रिपलिंग होता है, लेकिन हो जाता है। तो उसमें ये चीज़ें हम लोग पूछते हैं मीटिंग में कि ऐसा कोई अगर चीज़ मिली हो तो बताओ, ताकि उसको आप दूसरे स्कूलों में प्रोपोगेट कर सकें, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसे भी हमें बताएं। प्रशासनिक प्रॉब्लम्स हैं तो भी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की विद्यालय में प्रॉब्लम है तो वो भी पूछते हैं, उससे भी ऐसे ऐसे अवगत कराते हैं। और लेकिन ये तो जो भी चैलेंजेस मीट आउट करने की होती है, लेकिन अभी भी इस स्कूलों में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, टीचर्स की टीचर पीपल रेशियो की प्रॉब्लम है, और टीचर्स को भी मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी कामों में इन्वॉल्व कर रखा हुआ। कुछ टीचर्स हमेशा इलेक्शन में लगे रहते हैं, कोई ना कोई इलेक्शन हमेशा होता रहता है, चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं, ग्राम प्रधान के इलेक्शन है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, और उसमें उनको बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर बनाए रहते हैं, और सारे काम टीचर्स को दे रखा है कि वो गांव में जाएंगे, एक एक वोट को वेरीफाई करेंगे, एडिशन डिलीशन, कोई डेथ हो गई है तो उसे डिलीट करेंगे, कोई नया उस इस ग्रुप में आ गया है तो उसे एडिशन करेंगे, ये सारे काम लगभग लगभग साल भर चलते हैं। तो कुछ हमारा एक टीचर का सेक्शन तो इस कामों में साल भर लगा रहा है। तो जो हमारे पास जितने टीचर्स हैं तो उससे भी संख्या जनरली टीचर पीपल रेशियो के हिसाब से कम है
जी।
उसमें से भी कुछ वो इस कामों में ज़्यादातर इन्वॉल्व कर दिए गए हैं, तो वो फिर वो हमें कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो हमें जितने टीचर्स हैं उनका भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो उससे भी हम लोग जो प्रयास करते हैं थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है नीचे जाके। तो ये तो फील्ड की चैलेंजेस है, बाकी टीचर्स एक्टिव हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर्स को जो कामों में लगा दिया जाता है तो चलते हैं, और हमारे टीचर्स जनरली टेक्नोलॉजिकली भी लगभग अच्छे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी हैं जो भी हैं, अब सारे ऐप पे इस्तेमाल कर लेते हैं सारे। अभी हमारा एग्जामिनेशन हुआ है अभी 2-3 दिन पहले, शनिवार के दिन, तो वो सारा ऑनलाइन पे उन्होंने आंसर शीट ओमआर शीट्स को डाउनलोड करना सारा सेंड करना अपलोड करना सारा काम उन्होंने किया हुआ। तो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हम लोग थोड़ा कर रहे हैं कि ताकि जो मैन पावर की कमी है वो थोड़ा सा दूर हो जाए।
चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए BSA या फिर SCERT से किस तरीके का सपोर्ट आप सीख करते हैं?
थोड़ा सी दिक्कत ये होती है कि दोनों पे डायरेक्टरेट अलग है।
अच्छा,
बेसिक शिक्षा अधिकारी का डायरेक्टरेट अलग है, हमारा डायरेक्टरेट SCERT। हाँ, बेसिक शिक्षा अधिकारी का डायरेक्टरेट जो है वो डायरेक्टर बेसिक शिक्षा।
अच्छा,
तो एक तो तरफ देखें डायरेक्टरेट हमारा अलग है
जी,
और BSA वहाँ से कंट्रोल होते हैं और बाकी सारी चीज़ें SCERT से कंट्रोल होती हैं, लेकिन एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जितना होना चाहिए उतना होता नहीं।
अच्छा,
ये तो कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हर जगह है, कहीं भी है, और डाइट्स में एक गर्ली प्रॉब्लम्स जो चैलेंजेस हैं कि थोड़ी ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में डाइट थोड़ा सा दूर है हेडक्वार्टर से, तो इसकी वजह से दिक्कत है, कोई स्टाफ वहाँ रहना नहीं चाहता, बिजली की प्रॉब्लम है, नेट की प्रॉब्लम है, यहाँ भी हम लोग नेट से जूझ रहे हैं काफ़ी चीज़ों में, तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक तो रिमोट एरिया में होने की वजह से प्राप्त होती हैं। कोई भी चीज़ें अगर BSA से कोऑर्डिनेट करना हो या मीटिंग करनी हो, टीचर्स को भी आना हो तो थोड़ा सा दूर है, वो आने में उन्हें दिक्कत होती है, अगर हम BSA को भी बुलाएं खंड शिक्षा अधिकारी को, तो वो दूर की वजह से थोड़ा सा वो चीज़ें हमारी प्रभावित होती हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो हम मंडल के हेडक्वार्टर में इनको बुला के मीटिंग वूटिंग कर लें, इस तरह की चीज़ें तो हम लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी थोड़ी सी दिक्कत इसकी वजह से भी हमें होती है, हालांकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेते हैं, ये है। और बाकी स्टाफ अब डाइट में पहले स्टाफ की प्रॉब्लम थी, वो स्टाफ काफ़ी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब शोध वगैरह भी हम लोगों ने माइक्रो रिसर्च वगैरह किया है, एक हमने टॉपिक अभी भेजा है, तो एक टॉपिक पर शोध करने के लिए हमने एक टीम बनाई है, तो वो अब शोध का भी काम है डाइट का, कि वो चीज़ें किसी एकेडमिक चीज़ों पे वो रिसर्च का काम करें, तो अब चूँकि स्टाफ है इसलिए हम लोग उसे भी शोध का काम करने की कोशिश अब करेंगे, बजट वगैरह हमें अभी मिलने वाला है, मिल जाएगा तो हम से उसे करेंगे उस काम को। अभी जैसे इनका एग्जामिनेशन होना है सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स, एग्जामिनेशन 19-24 तक है, तो हम लोग एग्जामिनेशन में भेज रहे हैं। और कुछ ज़िलों में जैसे मेरठ में है, यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा है, फ्री सर्विस के लगभग 100 से ज़्यादा है, तो उनके भी सारे काम हमारे ही माध्यम होते हैं, तो वो हमारे पास एक एक्स्ट्रा बर्डन होते हैं जो हमें एकेडमिक कामों से इधर करते हैं, क्योंकि सारे उनके फाइलों को जितने एडमिशन्स होते हैं चेक करना, उनके एग्जामिनेशन्स को कंडक्ट कराना, सारी उनकी कापियों को हम लोग इकट्ठे करते हैं, फिर भिजवाने का काम है, बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की जो कापियाँ आती हैं हमारे पास उनके मूल्यांकन का काम है
जी।
ये सारे काम ही है।
सर, SCERT से कैसे, मतलब आप अपने जो भी नीड्स होती हैं या कुछ भी आपको इश्यूज हैं तो आप SCERT तक कैसे कम्युनिकेट
इसलिए करते हैं कि तो कोई ऐसी अर्जेंट चीज़ें तो मेल भी कर लेते हैं, अदरवाइज हर माह हमारी बैठक होती है।
अच्छा,
लास्ट वीक या 20 तारीख के बाद कभी भी हमारी एक बैठक होती है जिसमें हमारे SCERT के डायरेक्टर या हमारे बिजी एजुकेशन उस मीटिंग में रहते हैं, तो कोई चीज़ें होती है तो हम लोग वहाँ पे अपना फिर डिस्कस करते हैं।
तो सर, SCERT का इन्वॉल्वमेंट कहाँ, किस किस लेवल्स पे होता है डाइट की वर्किंग में?
SCERT का इन्वॉल्वमेंट तो लगभग काफ़ी होता है, इसलिए कि उन्हीं के सबॉर्डिनेशन में हम लोग काम करते हैं, तो जो भी जैसे कोई भी ट्रेनिंग हुई तो मास्टर्स ट्रेनर्स तैयार करने का काम हमारा SCERT का ही होता है।
अच्छा,
कोई अगर हमें ट्रेनिंग देनी है तो पहले मास्टर्स ट्रेनर्स तैयार हो गए, तो उसमें हमें भेजना पड़ता है, वो हम अपने स्टाफ को भेजते हैं या BSA से अगर कुछ स्टाफ भेजने हैं तो उन्हें भेजते हैं, मास्टर्स ट्रेनर्स ट्रेंड होकर आते हैं तो फिर वो हम उनके माध्यम से फिर नीचे ट्रेनिंग देते हैं
जी।
तो मास्टर्स ट्रेनर्स को तैयार करते हैं, बाकी क्या ट्रेनिंग है देनी है ये वो ट्रेनिंग हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग आप करा लीजिए, ये शेड्यूल है वो हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, फिर हम ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। बाकी कोई भी जैसे कोई छोटी छोटी प्रतियोगिताएँ करानी होती है, मसलन कोई पाठ्यक्रम योजना से संबंधित है या कोई पेंटिंग्स ड्राइंग से संबंधित है, सारे इंस्ट्रक्शन हमें देते हैं, जो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अनुसार हम काम करके उनको रिजल्ट भेजते हैं, फिर वो वहाँ से अपना मूल्यांकन करके वो भी रिजल्ट अपना स्टेट लेवल पे जारी करते हैं, सारी SRT करते हैं, SRT हमें बजट भी देती है।
अच्छा।
SRT हमारे मामलों में एक तरह से प्रशासनिक अधिकारी है, सारे लेक्चरर्स की और सेवा सत्य भी हमारी सबकी जितने स्टाफ है सारी SRT में होती हैं, तो उनका प्रशासनिक फाइनेंशियल सारा हमारे ऊपर उनका नियंत्रण है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं हम उसे फॉलो करते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है मीटिंग में शेयर करते हैं, हम उसे भी बात कर लेते हैं उनसे।
सर बजट एलोकेशन में मतलब आप सीधा मतलब आप अपना वो रखते हैं कि हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फिर वो वहाँ से फंड्स भेजते हैं।
एक तो जनरल है। अच्छा। एक तो जनरल बजट है कि सारी डाइट को देते हैं।
अच्छा।
जैसे आपका हमारे स्टाफ की सैलरी तो जैसे जैसे स्टाफ है उनके पास मालूम है उसी हिसाब से बजट एलोकेट करते हैं, तो जनरल बजट है।
जी जी।
कुछ मूलभूत ट्रेनिंग जो यूनिफॉर्म सारे डाइट में करानी है वो बजट वो सारे अपने स्तर से रिलीज कर देते हैं।
अच्छा।
कुछ चीजें हमसे मांगते हैं कि आपके डाइट पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है।
हाँ जी।
वो बजट वो अलग से जारी करते हैं।
अच्छा, तो वो आप मतलब पूरे डाइट में विजिट करते हैं, टीचर से मीटिंग करते हैं, तो फिर आपको
हमने मीटिंग करी अपने स्टाफ के साथ, इनसे पूछ लिया कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हम लोगों से डिमांड कर सकते हैं, तो वो सब एक काम बना के फिर उन्हें भेजते हैं, तो फिर वो हमें उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी बजट देते हैं।
जी जी।
सर कितने फ्रीक्वेंटली ये आप बजट के लिए बता सकते हैं SRT को?
अब ये हर साल का है।
अच्छा।
मतलब हमें हर साल वो कुछ न कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में पूछते हैं कि आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो पूछिए, कोई स्मार्ट क्लास बनानी है तो ठीक है, कोई और भी आपको रिक्वायरमेंट है, कोई स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट है तो वो हमें बजट देते हैं, हमें कंप्यूटर खरीदने हैं, लैपटॉप खरीदने हैं, प्रोजेक्टर खरीदने हैं, कुछ भी है तो वो चीज़ें हम उसे अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हैं तो देते हैं। बाकी हमारे पास थोड़ा सा बच्चों के ये शुल्क फीस जो देते हैं उसकी भी धनराशि हमारे पास रहती है, तो वो भी जैसे छोटे छोटे शुल्क उनके लाइब्रेरी के मद में है, साइंस में है, इस तरह के आते हैं तो वो भी हम लोग खर्च कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो हर साल अभी जैसे कि 6 या 5 या 6 डाइट को उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सलेंस के लिए उन्होंने चेंज किया, उसमें मेरिट भी। हमने पूछा था उन्होंने आपको क्या क्या चाहिए, हमने कुछ रिक्वायरमेंट उसमें लगभग 20 लाख की उन्होंने मांगी थी, तो 20 लाख की हमने भेजी थी।
अच्छा।
तो बजट भी हमें अब एलोकेट हो गया।
अच्छा।
तो वो हमें फिर वो उसके अनुसार फिर हम काम करेंगे, जैसे हमने एक बिजली का बिल हमारे पास बहुत बकाया है लगभग 4.5 लाख, तो हमने 5 लाख मांगे थे हमें मिल गया। टॉयलेट की हमारे कैंपस में पर्याप्त सुविधा नहीं है तो वो हमने मांगा था, वो भी हमें मिल गया। उसके अलावा हमने कंप्यूटर मांगे हैं, कुछ प्रोजेक्टर्स की हमने डिमांड करी है, कुछ पुस्तकों लाइब्रेरीज के लिए पैसे मांगे थे, वो सब चीज़ें हमें मिल गई।
तो सर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब किस बेसिस पे उन्होंने चूज़ किया या फिर मतलब वैसे?
वो अब चूज़ तो उन्होंने किया है मेनली उसमें, अब तो मेन डिस्कशन उनका था, लेकिन जो मूलभूत बातें थी जैसे कि अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ उन्होंने चूज़ किया, एक तो रीजन का ही उन्होंने ध्यान देते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, मध्य में है, इस तरह से उन्होंने सेलेक्ट किया। बाकी और रिक्वायरमेंट देखा जैसे गोरखपुर को उन्होंने चेंज किया, वाराणसी को चेंज किया, फिर लखनऊ में उनकी चीज़ें हैं उधर से गया, फिर इसे गया, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरे समझ से मेरठ को गया। तो उसमें ये है सेंट्रल एक्सलेंस में एक आइडियल लाइट में क्या क्या होनी चाहिए, धीरे धीरे वो सुविधाएँ वहाँ पर वो प्रोवाइड करेंगे। हाँ फिर यहाँ पे हो जाएगा, अभी डाइट की तो थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं थी, हम लोग कोशिश करते हैं, हमें भी बहुत ज़्यादा दिन हुआ नहीं।
अच्छा,
मैं यहाँ पे जुलाई में ज्वाइन किया था।
जी, जी,
लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसे अच्छा बना सकें।
तो सर अब BRC से कैसे कनेक्टेड है डाइट?
ब्लॉक रिसोर्स सेंटर हर ब्लॉक में है मेनली, तो वो प्रशासनिक नियंत्रण तो BSA का है।
जी जी।
जिले पे जो बेसिक शिक्षा के प्रशासनिक नियंत्रण, लेकिन BRC पे एक तो एक साफ ईसो BRC उपखंड शिक्षा अधिकारी ही है, और वहाँ पे 5 ARP है।
जी।
हमारे एक लेक्चरर्स एक ब्लॉक पे मेंटर है, 12 ब्लॉक है यहाँ पे, तो एक एक मेंटर है, ये भी एक साफ ईसो एक तरह से ARP ही है, तो इनके माध्यम से फिर बीआरसी एक तरह से हमसे कनेक्टेड है क्योंकि हर मीटिंग हम लोग इनकी मीटिंग करते हैं, इनके साथ डिस्कशन करते हैं। तो हमारे लिए बीआरसी का रोल, एआरपी और खंड शिक्षा अधिकारी, हमारी मीटिंगों में खंड शिक्षा अधिकारी भी आते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की मीटिंगों में हम लोग डिस्ट्रिक्ट भी जाया करते हैं, कभी कभी एडीबीसी मंडल के अधिकारी भी खंड शिक्षा अधिकारी या बीएससी की बैठक लेते हैं तो मैं वहाँ जाता हूँ। कभी कभी बीएसएस खंड शिक्षा अधिकारी की बैठक हर महीने वो लगभग 15 दिन में एक महीने में लेते हैं, तो उसमें भी हमें कोई उनसे बातें करनी होती है तो वहाँ चले जाते हैं बीएसएस दफ्तर में ताकि उनको अपनी बातें उनसे डिस्कस कर सकें। तो वो सीधे ब्लॉकों से हमारा जो कॉन्टैक्ट है एआरपी के थ्रू है और खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
सर, सो सपोर्ट की हमने बात करी थी तो हमने जब डाइट में आए तो हमने सपोर्ट देखा कि एनजीओ से भी मिल रहा है, तो आपको लगता है क्या वो एक्सटर्नल फैक्टर बहुत अच्छी चीज़ है डाइट के लिए, एनजीओ या फिर कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट फंडिंग?
बिल्कुल है, अभी लोगों से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है।
अच्छा,
खासकर हमारे यहाँ बहुत पहले से काम कर रहे हैं तो अब इनका भी स्टाफ 6-7 का स्टाफ है तो पूरी तरह से हमारे जो टीचर्स हैं प्री सर्विस टीचर्स से लेके इन सर्विस टीचर्स की ट्रेनिंग तक, बाकी हमारे डाइट के डे टू डे फंक्शंस में भी ये लोग हमें मदद करते हैं एडिशनल फैक्टर।
जी जी,
कभी कभी हमारे स्टाफ जैसे पूरी की पूरी ट्रेनिंग में लगा दिए जाते हैं, जैसे अभी 19 से 24 तक सारे स्टाफ हमारे सारे उनके लेक्चरर्स की ट्रेनिंग है इलाहाबाद में 4 दिन या 5 दिन की। अब इस दौरान फिर मेरे लिए हमारे ये हिमाना ही हमारे लिए हाथ पांव हुआ, इन्हीं के माध्यम से हम अपने फंक्शंस को रन कर सकते हैं। अब हमारे पास उसी दौरान हमारे पास एग्जामिनेशन भी है तो उनमें भी हमें परीक्षक अपने लेक्चरर्स को बैठाना पड़ता है, तब ये नहीं है तो फिर हम इनकी मदद लेते हैं। और बाकी क्वालिटी में भी इन्होंने भी एक ब्लॉक अपना चेंज करके शायद हसनापुर लिया हुआ, हसनापुर में ये काम करते हैं, बाकी कुछ स्कूलों को भी स्पेसिफिकली इन्होंने चिन्हित कर रखा जहाँ ये काम कर रहे हैं। तो जनरली एकेडमिक सपोर्ट देने का काम है तो उसमें जो हमारा डाइट का है उसमें ये हमारे लिए सहयोगी है। इन्होंने कंप्यूटर लैब भी इन लोगों के सहयोग से ही स्टेब्लिश है, आपने शायद पता नहीं देखा, तो इनके सहयोग से ही वो कंप्यूटर लैब भी हमारी स्टेब्लिश है। अब हम लोग जियो से संपर्क किए हुए, शायद नेट की दिक्कत ख़त्म हो जाए हमारी तो फिर शायद हम और उसे उसमें और भी काम हम लोग कर सकते हैं उसमें। तो एकेडमिक सपोर्ट के लिए हमारे लिए तो जो भी हम तो चाहते हैं कि बाहर से भी कोई सपोर्ट मिले, माध्यमिक से भी हम लोग बात करते हैं, वहाँ से भी कोई एकेडमिक सपोर्ट हम लोगों के मिलने की कोशिश होती है तो हम करते हैं। और अभी आगे आने वाले डाइट के फंक्शंस में मेरे साथ अभी हम लोग बेसिक में काम करते हैं, शायद अब माध्यमिक में भी कुछ ट्रेनिंग वगैरह कराने की जिम्मेदारी हम लोगों को संभवतः आगे मिलने वाली है, तो अगर मिलेगी तो उन लोग भी हम काम करेंगे।
नई शिक्षा नीति
में सबसे पहले अब तो सारे नई शिक्षा नीति के जो भी प्रावधान है सारे तो 2030 तक कंप्लीट लागू करने हैं, लेकिन अभी पहले स्टेप में आंगनवाड़ी मतलब प्री स्कूल को अभी हमारे स्कूल में इंटीग्रेशन का जो काम है वो चल रहा, तो आंगनवाड़ी उनको कार्यकर्तियों को उनको ट्रेनिंग देने का काम हो रहा, हमारे इनके ट्रेनिंग देने का काम कर रहा, उसे स्कूल में जोड़ने के लिए क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, फर्नीचर खरीदने की, ये तो जिला लेवल पे प्रशासनिक लेवल पे ये काम किया जा रहा है। उनको ट्रेनिंगें भी काफ़ी दी गई हैं, हमारे टीचर्स को भी ECC की ट्रेनिंग दी गई है।
अच्छा,
तो वो ट्रेनिंग वगैरह इनको भी ट्रेनिंग का काम कर रहा है, इनको इंटीग्रेट करने का काम हो रहा है क्योंकि अब वो नई एजुकेशन पॉलिसी में उनको हमसे जोड़ दिया गया, तो इंटीग्रेशन का भी चीज़ें ये काम चल रहा है। दूसरा काम हमारे पास एक इसका चल रहा निपुण का, निपुण का चल रहा है, ये 2026 तक ये कंप्लीट, हाँ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग कंप्लीट करने हैं। तो अब ये हर अभी हम लोगों ने एग्जामिनेशन इसी के लिए किया था, हर क्वार्टरली हम एग्जाम इनका करके टेस्ट देखते रहेंगे कि हमारा ये कितना बढ़ रहा है। अभी जो हमारा बेस लाइन सर्वे हुआ था पिछले साल जो CBSE ने कराया था, हर साल NCERT कराती थी, तबकि बार CBSE ने कराया था, तो मेरठ का जो रिजल्ट आया था लगभग 39% बेस लाइन हमारा 39% है, 39% बच्चों को ये सब सारी चीज़ें जो आती हैं ये आती हैं उन्हें। अब उसे बढ़ा के 25-26 तक हमें 100% करना है, तो एक काम इस पे हम लोगों का फोकस चल रहा है, तो एक ECC की ट्रेनिंग और ये इस पे है फोकस, ये हम पहले अचीव कर लें, बाकी जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आता जाएगा वो काम करते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग का काम हम कर ही रहे हैं, इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग चल रही है, आगे जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि इसमें शायद हमारे जो प्री सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग है ये कोर्स भी शायद बदलने वाला है, अभी DLED है, शायद एक कोई ट्रेनिंग कोर्स करने वाले हैं, बीएड या डीएलएड जो भी करें, तो अब वो कैसे होगा, जैसा इंस्ट्रक्शन होगा वो फिर हम लोग उस पर काम करेंगे। कि अभी तक दिक्कत है कि हम लोगों को बेसिक शिक्षा विभाग से गवर्न होता था, डीएलएड बीएड जो यूनिवर्सिटी से गवर्न होता था, अब एक करेंगे तो फिर कैसे दो थर्टी से करेंगे, अब जो डिसीजन होगा अब देखेंगे।
उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर?
नहीं कोई ठीक है, एक कोर्स हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। बस अब ये है कि जैसे आप इंटरमीडिएट के बाद ही टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में उनको जाने की व्यवस्था है, नई एजुकेशन पॉलिसी में भी है, चाहे तो अच्छा है, जिसको टीचर्स बनना है वो बने। नहीं होता क्या है कि बच्चे टीचर्स ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि उन्हें करना क्या है। जहाँ नौकरी मिल गई वहाँ उन्होंने कर लिया, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे उधर नहीं हुआ तो टीचर्स बनने के लिए चले आए, तो उनका इंटरेस्ट तो कहीं और था लेकिन वो कुछ नहीं हुआ तो टीचर्स बन गए, तो फिर अपने उससे सर्विस के साथ भी वो न्याय नहीं कर पाते। जिसको टीचर्स बनना होगा इंटरमीडिएट के बाद वो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में आएगा, फिर ट्रेनिंग करेगा, फिर आगे जाए। जब एक कोर्स हो जाए कैसे गवर्न होगा तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन हो जाए तो अच्छा है।
सर आपने पहले बोला था कि डायट एक अकेडमिक इंस्टीट्यूट है, बट आपकी काफ़ी सारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, जैसे आपने वो सारे बीएड कॉलेजेस का भी बताया था, वो सब आपके पास आता है। तो सर इतनी सारी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ हो तो क्या वो किसी तरीके से आपकी अकेडमिक रोल को कॉम्प्रोमाइज करता है?
और दूसरा ये है कि विभाग हमसे इसलिए कराता है कि उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, और हमारे पास भी चूँकि टीचर्स की ट्रेनिंग हमें करानी है या हमें प्री सर्विस टीचर्स की ट्रेनिंग करानी है, तो उनके जो भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं या उनके टीचर्स बनाने में जो सहायक है वो हम ही लोगों के पास है, तो हमें तो करना ही है। लेकिन इससे कुछ तो डाइवर्जन होता ही है कि अब हमारे पास जैसे ज़्यादा कॉलेज हैं, अब जब भी एडमिशन होता है तो उनके सबकी फाइलें हमें देखनी पड़ती है, एक एक बच्चे की फाइलों को हमें चेक करना पड़ता होता है, कहीं एडमिशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई गलत बच्चों का एडमिशन तो नहीं ले लिया, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, एक एक बच्चों की फाइल हमें चेक करानी पड़ती है। तो हमारे सारे स्टाफ ही करता है मिलकर धीरे धीरे, तो वो काम भी हमारा साथ ही साथ वो साल भर चलता रहता है। कभी लगभग एक बारे में दो सेमेस्टर के बच्चे पढ़ते हैं, पहले तीसरे सेमेस्टर के पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे चौथी बच्चे थे, और हर छः महीने बाद इनका सेमेस्टर सिस्टम है तो इनका एग्ज़ाम होता है। तो ऐसा नहीं कि हम खाली डाइट के ही बच्चों के एग्ज़ाम कराते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के ही बच्चों का एग्ज़ाम कराते हैं। अब सारी कापियाँ इकट्ठी होती हैं, फिर हम लोग दूसरी जगह भेजते हैं, वहाँ की कापियाँ हमारे पास आती है, तो एक महीने के आसपास तो लगभग 15-20 दिन हमारे पास मूल्यांकन का काम चलता है, कापियों को चेक कराना, उनके रिजल्ट बनाना, वो सारा मशीनरी फिर हमारे इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो फिर थोड़ा सा ये हमारा प्रभावित होता है बच्चों का पठन पाठन, जो हमारे प्री सर्विस ट्रेनिंग वाले बच्चे हैं, तो थोड़ा सा तो प्रभावित तो होता ही होता है, ऐसा नहीं है कि प्रभावित नहीं होता, ये है कि हमें एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ता है, काम थोड़ा प्रभावित तो होता ही।
जो एक्स्ट्रा वर्क प्रोवाइड करने की आपने बात करी, और फॉर एग्जांपल अभी जो आप इतना बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करें, आपको लगता है कि अथॉरिटी और मिलनी चाहिए ताकि आप इंडिपेंडेंटली, आपको लगता है कि डाइट शायद फंक्शन अच्छी तरीके से कर पाए रादर देन एससीईआरटी के ज़्यादा उसमें निगरानी,
मतलब ऑटोनॉमी,
ऑटोनॉमी क्या आप रिक्रूट कर पाए अपने टीचर्स को?
ऑटोनॉमी थोड़ी होनी चाहिए जो डाइट को है, ऐसा नहीं एससीईआरटी ने तो पूरी ऑटोनॉमी दे रखी है, लेकिन हमें दिक्कत होती है कि छोटे मोटे खर्चों के लिए हमें फाइलें यहाँ वहाँ डीएम से इनसे इनसे परमिशन लेनी पड़ती है। हम एक लिमिट से ज़्यादा, 1,00,000 से कोई भी ज़्यादा हम खर्च करते हैं तो हमें परमिशन फिर प्रशासन के लेनी पड़ती है। अब जैसे हमें दो गाड़ियाँ हमारे हायर करने की परमिशन है, अब इनके लिए हमें फाइल प्रशासन से करानी पड़ती है, हमारे लिए बड़ी टेढ़ी खीर होती है, तरह तरह के क्वेश्चन, गाड़ी आपको क्यों चाहिए, क्या करोगे आप, कोई ज़रूरत नहीं है, प्रशासनिक काम नहीं है आपके पास, तो इस तरह की चीज़ें, फिर वो हमें फिर वहाँ पे इन्फॉर्म करना, फिर वहाँ से उनसे बात कराना, ये में भी टाइम हमारा बहुत खर्च होता है। वो ऑटोनॉमी हमें मिलनी चाहिए ना, आपने कहा कि हम गाड़ी रख लें, आपने शर्तें निर्धारित कर ली, इतने गाड़ी का मंथली किराया है और इतना इस जेम पोर्टल से लेना है, सारी चीज़ें लेना है, तो हम पूरा पालन कर लेंगे, लेकिन सारी चीज़ें करने के बाद फिर हमें परमिशन वहाँ से लेनी पड़ती है। वो हमारे स्तर से हो तो मेरे समझ से हमारी थोड़ी सी ऊर्जा बच जाएगी जो हमारी वहाँ खर्च होती है, भागम दौड़ करके एक फाइल के लिए हमें एक हफ्ते चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस तरह की हमें ऑटोनॉमी, बाकी हमें और इंस्टीट्यूशन में हमें ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि हम जो इसके फंड हैं उसको हम यूटिलाइज कर सकें। कभी कभी होता है कि हमारे इस फंड में काफ़ी काफ़ी पैसे किसी किसी मद में पुराने पड़े हुए हैं, हमें नहीं पता कि वो पैसे किसके हैं। तो ये है कि उसका एक बार हिसाब किताब करके या तो फिर एस आर टी अपने पास मंगा ले या फिर हमें उसे खर्च करने के हाँ परमिशन उसे दे सकती है तो भी हमारे डायरेक्टर में बहुत से काम हो सकते हैं। तो हमें थोड़ी सी ऑटोनॉमी इस मामले में होनी चाहिए कि हम अपना काम खुद कर सकें, इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर सकें, हमें कहीं बाहर से कोई परमिशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। आप हमें गाइडलाइंस दे दो किस तरह से खर्च करने हैं तो हम सब चीज़ों को खर्च कर सकते हैं। बाकी एस आर टी के कंट्रोल में तो हम रहेंगे क्योंकि वो सारे हमारे बॉस हैं तो फिर हम उनके नियंत्रण में तो रहेंगे उनके चंगुल से डर नहीं बच सकते। हमारी सैलरी देते हैं, हमारा अपॉइंटमेंट करते हैं, हमारे ट्रांसफर करते हैं उनके नियंत्रण, लेकिन हमें वो थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिल लीजिए कि इंस्टीट्यूशन को हम उस तरह से मैनेज कर सकें।
सर तो जैसे यहाँ पे जैसे आपने पहले भी बोला था एनजीओ जो हुमाना एनजीओ है वहाँ से काफ़ी सपोर्ट मिलती है, लेकिन हम अभी बरेली से आए हैं और बरेली में ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने भी सर ने भी बताया था कि 6-7 जगहों पे है उत्तर, 6 जगहों पे उत्तर प्रदेश में, तो ये आपको एडिशनल सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन सपोज ये नहीं होता तो फिर आपको क्या लगता है यहाँ पे, और तो ये सपोर्ट को मैनेज करने के लिए जो उनसे मिल रहा है वो कहाँ से आना चाहिए था? एससीईआरटी से ज़्यादा स्टाफ या फिर बीआरसी बीएसए से, वो कहाँ से आता फिर अगर एनजीओ नहीं होता तो?
ये अगर हमारे पास नहीं होते तो फिर सपोर्ट तो कहीं से नहीं आता, क्योंकि बाकी 6 डायरेक्टरों को छोड़ते बाकी जगह तो नहीं है।
हाँ,
तो अपना जो भी डे टू डे फंक्शन है उनका अपने से ही मैनेज करते हैं, तो वो किसी तरह मैनेज करते होंगे। लेकिन इनकी वजह से अब ये सपोर्ट तो या तो दो चीज़ें होती, या तो स्टाफ बढ़ा के किया जाए या फिर कोई हमें ह्यूमन पावर्स कहीं से हायर करने की परमिशन हो थोड़ी सी। जैसे ये हैं तो हमें इससे मदद मिल जाती है, हम कोई प्रतियोगिताएँ कराते हैं तो इसमें एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं, हम जजेस में इनको डाल देते हैं, सारी चीज़ों में इनको हम डाल देते हैं। अदरवाइज हमें छोटे सा कोई कार्यक्रम कराना पड़ा, मान लीजिए अभी हमने योगा का कॉम्पिटिशन कराया तो अब उसमें जजेस कौन होंगे? नहीं होंगे, हमें बाहर से बुलाने पड़ते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। हम उन्हें चाय पिलाते हैं, हम तो अपना व्यक्तिगत संबंध उनसे के इस्तेमाल करके हम उन्हें रिक्वेस्ट करके उन्हें अपने साथ ले आते हैं, उन्हें कराते हैं, फिर उन्हें भेजते हैं, हम उन्हें एक सर्टिफिकेट देते हैं, हम उन्हें मोमेंटो देते हैं। तो ये हमारे लिए दिक्कत है, तो इनकी वजह से हम इनको भी जजेस में रख लेते हैं, क्योंकि डाइट के स्टाफ जनरली वो नहीं रखते क्योंकि हमारे कोई पाठ्यक्रम करा रहे हैं कि हम जगह पर पार्शलिटी हो सकती है बाहर से बुलाने के लिए, तो उनमें हम इस्तेमाल कर लेते हैं, इनके भी संबंधों को हम इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं
जी।
तो वो भी हमारे हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था अभी हम लोगों ने डिमांड करी है कि इस तरह की चीज़ें करते हमें एक स्पेसिफिक उन्हें मानदेय देने की व्यवस्था कर दी जाए कि उनको भी अगर अपने से आते हैं तो अपने पेट्रोल सब चीज़ें खर्चे निकल सकते हैं। अभी जैसे अभी हमने 3 यूनिवर्सिटी से बुलाए थे, मेरठ यूनिवर्सिटी से, तो इसलिए बुलाए थे कि वो हमारे पति थे, मैंने उन्हें कहा तुम्हारी बातों को टाल नहीं पाए तो फिर वो आए, फिर उन्होंने ले आए भाई जाओ कैसे हम आपको ले आएंगे, फिर हम दिन भर उनका खर्च होता है फिर हम उनको छोड़ते हैं। तो ये सब चीज़ों में उन्होंने तय करा लीजिए स्पेसिफिक से तय कर दिया, लेकिन वो हमें करना है कि कैसे होगा। तो अब जैसे ये है तो हमारे लिए इनसे बहुत सपोर्ट है, और बच्चों का ओरिएंटेशन कोर्स करना इन्होंने कराया सारी चीज़ें। अब इन्होंने एक और भी एक दो कार्यक्रम ये लोग अलग से कराते हैं, जैसे एलुमिनाई की मीटिंग हाँ हमारे यहाँ होती है, ये इनके माध्यम से होती है, इनका पूरा प्रयास है कि जो हमारे यहाँ से बच्चे निकलते हैं डीएलएड करके वो कहीं भी टीचर्स हैं मेरठ के अलावा भी, यहाँ तो लगभग 50 हैं, बाकी के कर लगभग 200 के आसपास हैं जो हमारे गाइड में यहाँ मेरठ के पढ़े हुए टीचर्स हैं, तो उससे इन्होंने कम्युनिकेशन बनाए हुए यहाँ पे आते हैं, फिर इनकी मीटिंग तो हो जाती है जो मेरठ के हैं वो हम लोग बी एस एस से परमिशन लेते हैं उन्हें छोड़े, लेकिन जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं उन्हें ऑनलाइन जोड़ते हैं, तो वो पूरा काम ये लोग परफॉर्म करते हैं, वो अच्छा है, उससे बच्चों में बहुत अच्छा रहता है। एक तो अपने डाइट से जुड़े हुए हैं तो बिलोंगिंगनेस है, दूसरा वो अच्छा लगता है उन्हें भी, हमें भी अच्छा लगता है, चलो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं यहाँ टीचर हैं, और कोई नई चीज़ें होती हैं तो उसमें आपस में एक कोऑर्डिनेशन भी बनता है, एक दूसरे से सहयोग भी हो जाता है।
सर स्कूल्स में तो जैसे यहाँ पे सारे, आपने बताया भी था कि सारे डाइट के लेक्चरर्स के पास वो एक ब्लॉक मेंटर करते हैं, तो काफ़ी सारे स्कूल्स होंगे जिन जहाँ पे उनको जाना होता है, तो स्कूल्स में कौन से किस किस से बातें होती है, कैसे टाइप का सपोर्ट डाइट उनको देती है?
एक तो जो सपोर्टिव सुपरविजन हमारे मेंटर्स करते हैं, हमारे लेक्चरर्स करते हैं, ये सपोर्टिव ऐप के माध्यम से करते हैं, इनका एक प्रेरणा ऐप है। जैसे हम लोगों का इंस्पेक्शन है, इन लोगों का सपोर्टिव सुपरविजन का ऐप है, अलग है। तो 10 का टारगेट है इनका और एक दिन में 2 करते हैं और लगभग 2 या 2.5 से 3 घंटे इन्हें एक स्कूल में रहना होता है। तो उसमें इनका पूरा काम है कि टीचर से भी बात करना, एक क्लास में बच्चों को जाके टेस्ट भी करना कि जिस लेवल का, जैसे ये हमारा निपुण लक्ष्य है तो उस लेवल के बच्चे हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो दिक्कतें उनको क्या है, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, टीचर से वार्ता करके देखते हैं कि उन टीचर्स को कोई कोई चीज़ों में प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, या बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या बच्चे ग्रेस्प नहीं कर रहे हैं तो कहीं टीचर्स के मेथड में तो कोई कमी नहीं है, तो टीचर से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। बाकी गांव के कोई प्रधान हैं या लोग हैं उनसे भी स्कूल का फीडबैक लेते हैं कि वो स्कूल में उनका इन्वॉल्वमेंट है नहीं, क्योंकि बिना समुदाय को जोड़े तो स्कूल का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। समुदाय जुड़ेगा स्कूल से तो फिर वो अच्छी रहती है, टीचर्स को भी लगता है कि वो अपने लोगों के बीच में काम कर रहा, और स्कूल का एक तरह से प्रोटेक्शन भी होता है अगर गाँव वाले जुड़े हुए हैं, और गाँव वाले जुड़ते नहीं हैं तो फिर स्कूल की प्रॉपर्टी का भी डैमेज होता है और फिर दिक्कतें होती है। तो वो टीचर से बात करते हैं, बच्चों से भी बात करते हैं और गांव के लोगों से भी बात करते हैं, टेस्ट भी करते हैं, टीचर्स में अगर कोई दिक्कत है तो उसे बताते भी हैं कि आपको ये काम करने, कोई स्कूल के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में प्रॉब्लम्स है या कोई प्रशासनिक प्रॉब्लम है तो उसे नोट करके भी लेते हैं। वो हमने कह रखा कि कोई प्रशासनिक मसला हो तो आप हमें लिख के दे दिया करो ताकि हम सीधे BSA को से अवगत करा सकें, जैसे मिड डे मील है नहीं बन रहा है, प्रशासनिक मसला है, या क्वालिटी खराब है तो ये भी प्रशासनिक मसला है, एक दिन सोमवार के दिन उन्हें फल मिलता है, बुधवार के दिन उन्हें 100 ग्राम दूध मिलता है, वो मिल रहा है नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो भाई बताओ, वो फिर हम BSA को अवगत कराया जाए कि इस स्कूल में ये व्यवस्था नहीं चल रही है या ACR एडिशनल क्लासरूम की कमी है या कोई और भी प्रॉब्लम है तो हमें बताएं। तो उससे एक तो एकेडमिक सपोर्ट देते ही देते, दूसरे फिजिकल स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है तो भी हमें पता लग जाते हैं, हम लोग BSA को अवगत करा देते हैं, काफ़ी कुछ दूर हो जाती है जो भी होने लगे, कहीं कहीं प्रधान कोऑपरेटिव नहीं है क्योंकि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोवाइड करने का काम वो पंचायतों को दे रखा गया है, ऑपरेशन कायाकल्प, तो वो अपने जो ग्राम निधि का फंड है उनका, जो वित्त आयोग का फंड है, वो फिर स्कूलों में वो खर्च करते हैं, कहीं टैक्स लगा रखा है जो भी है, तो कहीं प्रधान सहयोगी है तो बहुत अच्छा काम करा रखा, कहीं सहयोगी नहीं है तो फिर वो भी आ जाता है, फिर वो हम लोग अवगत कराते हैं, फिर BSA अपनी मीटिंग में DM से CDO से जिससे भी कहना होता है कहते हैं सर इस गाँव में काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, तो ये भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं।
तो सर आपने बोला कि टीचर्स लेक्चरर्स का सपोर्टिव सुपरविजन का है और आपको भी इंस्पेक्ट करने जाना
है? हाँ, हमें हमारा 20 का लक्ष्य है हर माह, BSA का हमारा और खंड शिक्षा अधिकारी का, ये 20 का हम लोगों का प्रशासनिक इंस्पेक्शन है, तो हमारे वाले मामले में ज्यादातर प्रशासनिक है, प्रशासनिक का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है। इन लोगों का सपोर्टिव सुपरविजन है कि एकेडमिक सपोर्ट से संबंधित है ARP का और इनका, तो ARP को 30 का लक्ष्य है, इनको जो है वो 10 का लक्ष्य।
अच्छा, तो सर जब आप इंस्पेक्ट करने जाते हैं तो ऐसा मतलब आपको भी कुछ ऐप है जिस पे आपको भी वो डेटा डालना होता है कि आप क्या इंस्पेक्ट?
हमारे पास भी ऐप है, प्रेरणा ऐप है, एडमिशन जो हमारे पास ऐप है वही BSA के पास है, वही खंड शिक्षा अधिकारी के पास है, और जो ऐप ARP के पास है वो हमारे राइट मेंटर्स के पास है, हम लोग भी ऑनलाइन ही इंस्पेक्शन करते हैं।
तो सर ये इन्फॉर्मेशन जाता है SCRT को?
ये ऑनलाइन जाता है, SCRT को भी जाता है और हमारे सर्व शिक्षा अभियान जो समग्र शिक्षा अभियान है DG के वहाँ भी जाता है। अच्छा। तो ऐप की मॉनिटरिंग वहाँ से होती है। अच्छा। क्योंकि इसमें हमें अपने फोटो भी डालने पड़ते हैं, इसमें GPS से भी इनरोल्ड है, ऐसा नहीं हम यहाँ बैठे बैठे भर दे रहे हैं, वो हमारी लोकेशन भी लेगा और टाइमिंग भी उस पर होगी, हम कितना दिन कितना देर उस विद्यालय में रहे हैं। अच्छा। हमें अपनी सेल्फी उसमें अपलोड करनी पड़ती है। अच्छा। स्कूल के नाम वगैरह भी हमें उस पर अपलोड करते हैं, बच्चों के फ़ोटो, स्कूल के फ़ोटो हमें सारी अपलोड करनी पड़ती है। उसमें हम इधर उधर नहीं कर सकते, मतलब हम करते हैं तो करते हैं।
तो सर आपके पैरामीटर्स जो ऐप पे होते हैं और इनके पैरामीटर्स जो ऐप वो सेम होते हैं?
नहीं, अंतर अंतर है। हाँ, उनके एकेडमिक वाले हैं, हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं। हाँ, कितने टीचर्स हैं, कितने बच्चे हैं, ये सब मिड डे मील मिल रहा है, मिल नहीं रहा है, बिल्डिंग में टाइल्स मतलब लगी है नहीं है, टॉयलेट में टाइलिंग्स लगा हुआ कि नहीं हुआ, बच्चों के पानी की व्यवस्था है नहीं है, हैंड वॉश है या नहीं, हमारे पास प्रशासनिक है, उनके पास एकेडमिक सपोर्ट।
तो सर सपोज आप कोई स्कूल में जा रहे हो और देख रहे हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है और टीचर्स ने भी वो फीडबैक दी है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो अगर आप वो इन्फॉर्मेशन ऐप पे डाले और वो इन्फॉर्मेशन गई SCERT DG के पास, तो फिर क्या आपने कुछ चेंज देखा है, कुछ एक्शन देखा है उनकी तरफ से?
देखा है, क्योंकि वहाँ पे उसकी मॉनिटरिंग होती है।
अच्छा,
कहाँ कहाँ पे होता है और उसका थर्ड पार्टी इवेल्युएशन भी कराते हैं वो। एक तो BSA रिपोर्ट भेजता है डिस्ट्रिक्ट से कि हमारे पास इन स्कूलों में ये 19 पैरामीटर्स हैं एक स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या क्या होने चाहिए, तो 19 पैरामीटर्स पे वो कितने स्कूल सेचुरेट हो गए, कितने सेचुरेट नहीं हुए, इसकी रिपोर्ट एक तो BSA देता है, दूसरा वो एक किसी प्राइवेट संस्था से उसका अपना सर्वे भी कराते हैं, स्टडी भी कराते हैं, उसकी भी रिपोर्ट है, दोनों को मिलाते हैं, फिर वो उनकी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी जाती है। एक मीटिंग DM के अध्यक्षता में भी हर मंथ होती है, जिसमें हम लोग भी जाते हैं, BSA भी रहते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी भी रहते हैं, उस पर उसमें चर्चा होती है कहाँ कहाँ किस पैरामीटर्स की अभी कमी है और कहाँ कहाँ काम होने हैं, क्योंकि प्रधान वगैरह ज़्यादातर मुख्य विकास अधिकारी या CDO से जुड़े होते हैं, तो वो फिर उनके साथ जब बैठक करते हैं BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या तो वो चीज़ें बताते हैं कि ये यहाँ काम नहीं है, काम कराओ, क्योंकि ग्राम प्रधान जो योजना बनाता है उसको भी पैसे मिलते हैं, तो फिर वो उस योजनाओं में वो डलवाते हैं कि आप डालो यहाँ पे टाइल्स लगानी है, बाथरूम बनाने हैं या समरसेबल लगाने हैं, वो चीज़ें फिर नीचे होती हैं, तो उन बैठकों से या उस रिपोर्ट से ये होता है कि जहाँ काम नहीं हुआ वो फोकस आ जाता है संज्ञान में, तो उस पर फोकस डाल के काम हो जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे काम तो तुरंत हो जाते हैं, है ना, बड़े काम हैं वो उसमें दिक्कत होती है, जैसे कि अब हर स्कूल में एक दिव्यांग बच्चे को या विकलांग बच्चे को टॉयलेट बनाया जा रहा है, ये काम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो ठीक है, यहाँ पे तो प्रशासन ने CDO ने उसमें इंटरेस्ट लिया, कई जिलों में थोड़ा पीछे है, तो हमारे यहाँ लगभग 70% तो सेचुरेट हो गए, उनके टॉयलेट अलग से बन रहे हैं क्योंकि उसकी रैंक थोड़ा सा ज़्यादा स्लोपिंग होता है और बड़ा अंदर साइज बड़ी होती है, हैंडल लगा होता है, कमर और वेस्टर्न सीट वगैरह लगाते हैं उस तरह का, तो उसमें टाइम लगता है। अब जैसे कि अब ग्राम पंचायत के पास पैसे नहीं है और उन्हें खर्च कर दिया किसी और काम में, स्कूल ही नहीं है और भी काम है उसे गांव में कराने हैं, तो उसके पास पैसे नहीं है, तो अब फिर प्रशासन देखता है कहीं से करा सकता है कि नहीं, कहीं से करा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं तो कर लेते हैं दूसरे मत से, नहीं तो फिर अगले साल जब पैसे मिलेंगे तब वो काम हो पाता है। छोटा काम है जैसे टाइल्स नहीं लगी है बाथरूम में, तो वो लग जाता है, वो संज्ञान में आ गया तो वो लग जाएगा, तो रैंप नहीं बना है तो रैंप बन जाता है।
सर अगर ये चीज़ें सामने आई और आपने ऐप में लिखी और उस पर फॉलोअप हो रहा है, उनको पैसे भी दे दिए गए, उनको फंड दी गई, लेकिन अगर वो फंड किसी और चीज़ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका फॉलोअप फिर कैसे होता है, अगर फिर कि आपने आपको पहले इस पर दिया था और ये काम हुआ,
उसका फॉलोअप इंफ्रास्ट्रक्चर का जनरली हम नहीं कर पाते।
अच्छा।
क्योंकि हमारा विभाग तो फंड देता नहीं, वो तो फॉलोअप तब करेगा ना जो वो फंड देगा, तो देखा कि हमने फंड दिया उसने काम किया कि नहीं किया, फंड आ रहा है वो पंचायत विभाग से, तो हम तो अभी तक इतना ही विभाग और हम लोग इतना ही मॉनिटर करते हैं कि वो 9 पैरामीटर्स में सेचुरेट हुआ कि नहीं हुआ स्कूल, कौन कौन सेचुरेट है, कौन कौन बचा हुआ, वो फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया ये काम नहीं हुआ आप इसे करा दो, उनको भी इंस्ट्रक्शन है कि वो काम करा दें, तो स्कूल तो उनके लिए एक है, उसके अलावा पंचायत घर बनाना है, उन्हें लाइब्रेरी भी बनानी है, उन्हें और भी काम करने हैं, उन्हें गांव में सड़कें भी मरम्मत करानी है, टॉयलेट भी देखना है, सफाई भी, सारी चीज़ें, तो वो फिर ये हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो बचे हुए उनके जो एनुअल वर्क प्लान है उसमें इंटीग्रेट हो जाए, तो हो भी जाता है, नहीं भी होता, कहीं कहीं प्रधान एक्टिव हैं स्कूलों के प्रति उनका सहयोगात्मक है तो प्रायोरिटी के आधार पर हमारे स्कूलों का काम करा दिया, कहीं कहीं प्रधान हमारे स्कूलों के प्रति उनका नज़रिया ठीक नहीं है तो जनरली वो दिक्कत करते हैं, तो वो हम बस इतना ही है कि हम मॉनिटरिंग करते हैं कि यहाँ हमारा काम हो गया या नहीं होगा, फिर हम उन्हें हैवनिंग करते हैं, फिर वहाँ से भी फ़ोन कराते हैं, BSA भी लगे रहते हैं कि सर ये हमारे स्कूलों में काम नहीं हुआ, होता रहता है, दिक्कत भी होती रहती है लेकिन होता रहता है।
सर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, ज़्यादा दिक्कत होती है, काम हो जाता
है? नहीं, दिक्कतें तो हैं, बिल्कुल है, दिक्कत है, इसलिए कि ऐसा नहीं को कराना नहीं चाहते, उनके पास भी फंड की लिमिटेशंस हैं, उन्हें अपने भी काम कराने हमारे स्कूलों में, लेकिन मेजर काम जनरली हो गए हैं, लगभग मेरठ में देखें तो लगभग 90% 90 पैरामीटर्स पे स्कूल सेचुरेट है, लगभग तो 10% है, 90% हो गया तो 10% भी कुछ दिन में हो भी जाएगा। अब उसमें भी है दिक्कत कि जैसे बड़ा गांव है तो उसके पास फंड ज़्यादा है, छोटा गांव है तो उसके पास फंड छोटा है, तो बड़े गांव वाले तो स्कूल में करा देते हैं, छोटे में फिर दिक्कत होती है क्योंकि स्कूल में इंटरलॉकिंग भी करानी है, ECR है तो भी कराने हैं, वाइट वॉश भी उन्हें कराने हैं, बिजली के बिल भी उन्हें पंचायतों को ही देने हैं जो स्कूल में खर्च हो रही है, टॉयलेट है, टाइल्स लगाने हैं स्कूलों में, नीचे फर्श में टाइल्स लगानी है, फर्नीचर है, बाउंड्री वॉल है, तो सारा एक बार में तो हो नहीं सकता, थोड़े थोड़े काम हो सकते हैं, बाउंड्री वॉल बनानी है, स्कूल का कैंपस बहुत बड़ा है तो अब सारा बाउंड्री वॉल बना दिया तो सारा फंड तो उसमें कंज्यूम हो गया, बाकी जरूरी वाला काम वो कैसे करेंगे, छोटी बाउंड्री वॉल तो उन्होंने बना दी, तो इस तरह से है, वो अपना फंड देखते हैं फिर मैनेज करके वो करते हैं, धीरे धीरे हो रहा है, मुझे लग रहा है कि अब सारा कुछ दिन में सेचुरेट हो जाएगा।
ऑल्सो सर, डाइट के अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जैसे सीनियर लेक्चरर्स की, इवन आपकी, इनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट का क्या स्कोप है?
इनकी, हमारे लेक्चरर्स की?
जी, लेक्चरर्स की, हाँ, किसी की
हम लोगों की ट्रेनिंग जरूरत पड़ने पर होती रहती
है। अच्छा, कभी कभी और बाकी डाइट्स के प्रिंसिपल्स की वैसे ट्रेनिंग
तो डाइट्स की एज इट इज तो ट्रेनिंग प्रिंसिपल की नहीं होती।
अच्छा,
क्योंकि हम लोग नीचे से या प्रमोशन कर करके आए हुए हैं, जनरली हमें वो उस तरह से हमारे विभागीय ट्रेनिंग तो काम की होगी, लेक्चरर्स की ट्रेनिंग हमेशा भी 4 दिन की ट्रेनिंग के लिए लोग जा रहे हैं, 4 मिनट्स के लिए इस तरह से इनकी ट्रेनिंग हुआ करती है, जैसे कोई मैथमेटिक्स का कोई इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग करना चाह रहा तो मैथमेटिक्स के टीचर हमारे जाएंगे, कोई साइंस का कोई उन्होंने कोई ट्रेनिंग स्पेशल चीज़ें कराई है तो साइंस का हमारा टीचर्स जाएगा, तो इस तरह से वहाँ बुलाते रहते हैं, सोशल साइंस की जरूरत है तो बुलाएंगे, वो टीचर्स को बुला के इनको जो भी सपोर्ट देना होता है ये चलता रहता है।
सर, आपकी बाकी डाइट्स के प्रिंसिपल्स के साथ कोई मीटिंग, मतलब बाकी सबकी?
जब लखनऊ मीटिंग होती है सब हम वहीं इकट्ठे होते हैं।
अच्छा,
होती है तो सारे लोगों की पूरे UP की बैठक एक साथ होती
है। अच्छा अच्छा,
तो जो भी 60-65 डाइट है हम सारे प्रिंसिपल्स वहीं इकट्ठे होते हैं।
अच्छा,
तो उनके साथ हमारी मीटिंग तो होती है, हमारी आपस का भी इंटरेक्शन उसमें होता है, और हर हमारी मीटिंग में 5 डाइटों को अपना प्रेजेंटेशन करना होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्यों क्या कर रहे हैं, नया उन्होंने क्या काम किया, तो उसका प्रेजेंटेशन करना चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे हैं, जैसे सोशल साइंस का इंस्टीट्यूट है, विज्ञान का इंस्टीट्यूट है, हमारा एक CMET है इलाहाबाद में, तो इनको भी अपने एक दो संस्थान को भी अपना प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, क्या कर रहे हैं, हमारा पाठ्यक्रम डिवीजन है, पाठ्य पुस्तक अधिकारी हैं जो पाठ्यक्रम बनाने वाने का काम है, पुस्तकें छपाने वगैरह, तो वो लोग भी एक या दो इंस्टीट्यूट भी उस समय अपना प्रेजेंटेशन करते हैं, तो हम लोग देखते हैं इन लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, तो हमारा आपस का इंटरेक्शन होता है, प्लस उनसे भी हमारी वक्त होती है।
कितना फ्रीक्वेंटली होता है सर ये
मीटिंग? हर माह।
अच्छा,
हाँ, हर माह होती
है। अच्छा, सर क्या आपको लगता है कि जैसे इतने सारे डाइट्स हैं यूपी में, तो हर महीने में अगर आप जाके ये मीटिंग कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि क्या अच्छा हो रहा है, डाइट्स प्रेजेंट कर रही है, लेकिन ऐसे बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स भी होंगे जो डाइट्स फेस कर रही है, तो अगर कोई ऐसा चैनल हो जहाँ पे अगर डाइट के प्रिंसिपल, सपोज प्रिंसिपल एक डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल दूसरे प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं और दोनों मर्ज करके वो प्रॉब्लम SCERT के पास लेके जा रहे हैं, तो मेजॉरिटी भी होगी, तो आपको क्या लगता है वो वैसा चैनल यूजफुल होगा आपके लिए?
मेरे हिसाब से तो इस तरह का कोई व्यवस्था तो है नहीं कि दो लोग या तीन लोग या 4 लोग हम मिल के बात करेंगे तो हमारी बातें सुनी जाएंगे, अदरवाइज नहीं सुनी जाएंगी, हमारी बातें इंडिविजुअली सुनी जाती हैं क्योंकि निराकरण हमारा इंडिविजुअली होना है। अब ऐसा नहीं है कि हमारा जो मेरठ की प्रॉब्लम है वही गाजियाबाद की प्रॉब्लम हो और वही मुजफ्फरनगर की प्रॉब्लम हो, बागपत की हो, हमारी प्रॉब्लम हो सकता है कुछ और है, जैसे बुलंदशहर की डाइट एकदम सिटी में है, एकदम DM आवास है, आवास के बगल में है, अब उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 घंटे रहती है, उनके लिए नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा रहती है, हमारे पास वो प्रॉब्लम है, तो हमारे साथ हमारे डिमांड में वो क्यों सहयोग करेंगे, तो हमारी इंडिविजुअल बातें सुनी जाती है। सर हमने डिमांड करी तो हमें बिजली का बिल हमारा काफ़ी बकाया तो हमें मिले, तो वो हमारी इंडिविजुअल हम डिमांड करते हैं तो हमारी वो सुनी जाती है, ऐसा नहीं है कि सर में हमारी बातें सुनी नहीं जाती।
सर कोविड के समय तो सर आप यहाँ पे नहीं थे, लेकिन अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हो तो कि कैसे कैसे टाइप का डेली एक्टिविटीज कैसे आप चला रहे थे और आपकी रिलेशनशिप तब SCRT BRC स्कूल से कैसे थी?
एक तो बच्चे जो हमारे पढ़ते हैं प्री सर्विस टीचर्स जो हमारे ट्रेनिंग हैं इनका तो क्लासेस तो सारे बंद थे, प्राइमरी स्कूल्स के भी बंद थे, सबकी सब होम में थे, वहीं से काम कर रहे थे, तो ऑनलाइन कोर्सेस ये लोग चलाते थे। इसमें आप लोग भी सहयोगी NGO भी लगा हुआ था, हमारे टीचर्स भी ग्रुप बना रखा था, तो ऑनलाइन ये लोग उनको पढ़ाने का काम करते थे। इसी तरह जो BSA के यहाँ भी बच्चों का ग्रुप बना हुआ था, लेकिन अब दिक्कत वहाँ पे ज़्यादा थी, जैसे हमारे बच्चे बड़े हैं सबके पास फोन है तो ये तो इनका तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी दिक्कत थी BSA लेवल पे बच्चों की, क्योंकि हमारे ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं, तो उनके घर में एक फ़ोन है, फादर का है, चाचा का है, भाई का है, जो भी है, तो वो अपने कामों में लगा हुआ है, तो या नहीं है ऐसा भी है कि फ़ोन नहीं है, है भी तो वो स्मार्टफोन नहीं है, बटन वाले फ़ोन है, तो लेकिन जुड़े थे लगभग 60-65% बच्चे तो जुड़े थे उससे, और हर दिन कुछ न कुछ कोर्सेज वहाँ से लखनऊ से उस ऐप पे व्हाट्सएप पे आता था, फिर उस ग्रुप में उसके बच्चों को शेयर किए जाते थे वो बच्चों को पढ़ने के लिए, तो कुछ न कुछ रोज़ उनके कोर्सेज आते थे, रोज़ उनको ट्रांसफ़र किए जाते थे, तो उससे वो पढ़ते थे। कुछ मोहल्ला क्लासेस चलाने की कोशिश की गई थी कि मोहल्ला में एक जगह ऐसी है जहाँ पे बच्चों को बुला के फिर जितने आ सकते हैं वहाँ ऐप के माध्यम से पढ़ा, जैसे कैसे कुछ बच्चों के पास फ़ोन नहीं थे तो उनको चिन्हित किए गए उनके पास फ़ोन नहीं, तो उन्हें एक जगह इकट्ठा करके जो एक सहायक था वो अपना फ़ोन लेके जाता था तो फिर उस पर दिखाता था वीडियो ऑडियो जो भी था, तो इस तरह से भी पढ़ाने की उन्हें कोशिश करी गई थी, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा सफलता तो नहीं मिली बच्चों में, एक साल दो साल में थोड़ा सा एकेडमिक ह्रास तो हुआ ही हुआ, बच्चों का हमारे नहीं हुआ कि बच्चे बड़े थे तो इनके लिए अपने भी पढ़ सकते हैं, किताबें हैं इनके पास तो पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन इनकी रेगुलर क्लासेस ना हमारे लेक्चरर्स ने इनकी ली।
बिल्कुल, तो सर लेक्चरर्स को डायट आना होता था कोविड के समय?
नहीं ना, वो घर से,
तो आप इसके पहले
हम लोग प्रशासनिक थे तो हमें बीच बीच में आना पड़ता था। बीच बीच में आना पड़ता था जैसे कोई पे है या कोई और भी काम है या इंस्टीट्यूशन देखने के लिए, कभी कभी वो आना पड़ता था, रेगुलर नहीं था।
तो सर ये आपकी कॉल थी, मतलब प्रिंसिपल बुला सकते थे अगर लेक्चरर्स को बुलाना
है? हाँ, अगर कोई काम है तो उस तरह के कोई इमरजेंसी आ गई तो फिर तो बुलाना ही था, और बहुत से लोगों की ड्यूटी प्रशासन ने लगा रखी थी उस समय कोविड में, कुछ लोगों के जो वहाँ पे सेंटर्स बना रखा था, कोविड सेंटर बना रखा था, और वहाँ पे ड्यूटी थी, कुछ लोगों को कहीं कहीं मोहल्ले में ड्यूटी लगा रखी थी, वो चीज़ें बंटवाने में राशन में भी ड्यूटी लगा रखी थी, बाकी हर जगह हम लोगों ने कोविड हेल्प डेस्क बना रखी थी, तो कहीं कहीं सबकी इधर उधर ड्यूटी लगी हुई थी, तो ज़रूरत पड़ने पे इनको बुलाया जा सकता था, ड्यूटी लग जाती थी तो इनको भेजना पड़ता था, तो उन दौरान भी हम लोगों ने तो काम किया।
तो सर
सर डाइट के अंदर करियर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या पे है आपका, करियर वाइज कैसे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट?
करियर वाइज मतलब हमारे स्टाफ का या बच्चे का?
स्टाफ का, प्रमोशन या
प्रमोशन जी। अभी एक्चुअली दिक्कत क्या है, अभी इनकी ठीक से नियमावली हमारे लेक्चरर्स की बनी नहीं है, हमारा जो सीनियर लेक्चरर है या वाइस प्रिंसिपल या हमारा प्रिंसिपल, हमारा तो है
जी,
हमारा तो एक प्रक्रिया निर्धारित है क्या होता है, लेकिन अभी लेक्चरर्स का, बाबू का भी है, फोर्थ क्लास का भी है, लेक्चरर्स अभी तक डाइट में, अब दो साल तीन साल से ही लेक्चरर्स डाइट में हुए हैं, अदरवाइज यहाँ डेपुटेशन पे आते थे।
अच्छा।
राजकीय इंटर कॉलेज से, माध्यमिक से या हमारे बेसिक से भी इसमें टीचर्स से तो लेक्चरर का काम करते थे, अब ये लेक्चरर्स का पद सृजन हो गया, अब ये डाइट में लगभग 17 लेक्चरर्स के पद है एक डाइट में, हमारे यहाँ वर्तमान में इसमें 16 कार्यरत है, ये डाइट के ही लेक्चरर्स हैं, ये फुल फ्लेज डाइट के लेक्चरर्स पहली बार हुए हैं, तभी इनकी सेवा नियमावली बन रही है, कुछ बनी है कुछ बन रही है, फिर इनका डिसाइड होगा कि इनका प्रमोशन इसका लेवल क्या है, क्योंकि अभी तक डाइट में तो स्टाफ ही नहीं था, बाकी हम प्रशासनिक थे, हम प्रशासनिक में इनके लोग हैं, चाहे सीनियर लेक्चरर्स हो या वाइस प्रिंसिपल हो या हम प्रिंसिपल हो, हम प्रशासनिक विंग से आए हुए हैं, आज हम यहाँ हैं, कल हम फिर उधर फिर जा सकते हैं उस प्रशासनिक लेवल पे, तो हमारा तो बना हुआ है वो पैरामीटर्स या हमारी हायरार्की बनी हुई, कैसे कैसे हमारा प्रमोशन होगा, इनका भी बनना है लेक्चरर्स, तो इनका भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इनको किस पद पर लेंगे, अब 6-7 लेक्चरर्स के पद हैं, जिनमें हो सकता है 3 प्रमोशन के लिए इनका कर दे, वाइस प्रिंसिपल पर भी इनका कर दे, क्योंकि इनका डाइट का ही पद है फिलहाल, अब इनका प्रमोट करके फिर डाइट में ही नहीं रहना।
तो सर आखिरी सवाल, सर डाइट्स की गोल्स तो होंगी, हर एक साल में इतना कुछ करना है, ये हासिल करना है, ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे जिसकी तरफ आप काम कर रहे हैं, तो अगर आपको बताना हो कि वो जो पेपर में गोल्स ऑब्जेक्टिव्स है और जो आप ग्राउंड में कर रहे हैं, तो उन दोनों में जो अंतर होता है, तो कौन सी चीज़ की, अगर आपको टॉप 1 or 2 चीज़ें बतानी हो कि इस चैलेंज की वजह से शायद ये उतना पेपर में जो है वो हासिल नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या होगा?
एनुअल पूरा
जैसा आपको
नहीं, पेपर्स में गोल, जैसे कि आप सपोज को एक उदाहरण देके हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ये हमारा निपुण लक्ष्य है, तो जो बेसलाइन सर्वे हुआ था तो वो बाहरी एजेंसी ने कराया था, एनसीईआरटी हर साल कराती थी 3 साल बाद एक बार एनुअल असेसमेंट सर्वे, आपकी बार उन्होंने जिम्मेदारी सीबीएसई को पिछले साल कराया था, 2021 में इन्होंने टेस्ट कराया, पूरी यूपी का कराया, तो उसमें उन्होंने आंकड़े निकाले, उसमें जैसे हमारा 39% हमारा बेसलाइन सर्वे है कि कक्षा 1, 2, 3 में हमारे पास 39% बच्चे ऐसे हैं जो इस पैरामीटर्स में खड़े उतरते हैं, बाकी को हमें 100% लाना है, तो हमारा टारगेट, हमारा बेसलाइन भी हो गया, हमारा टारगेट भी है कि 2026 तक ये पूरा करना। अब इसमें हमें हर क्वार्टरली इनका टेस्ट लेते रहना है, हमें देखते रहना है कि क्या हो रहा है, तो अब हम लोग टेस्ट लेने का काम, पहली बार अभी हमने अभी टेस्ट लिया है, उसका रिजल्ट आ जाएगा तो पता लगेगा कि हम कितना हम उसमें सफल हुए, नहीं तो फिर उस तरह से हम फिर उसमें फोकस करेंगे। अब इसके लिए रणनीति भी बनाई गई, रणनीति हम लोगों ने क्या बनाई है कि हर एआरपी को 10-10 स्कूल हम लोगों ने दे दिए हैं कि ये 10 स्कूल को आपको ये निपुण स्कूल बनाना है, मतलब इन लक्ष्यों से सैचुरेट करना है, और एक SRG हमारे पास 3 SRG भी हैं स्टेट रिसोर्स ग्रुप के, उनको एक ब्लॉक दिया हुआ कि इस ब्लॉक को आप कोशिश करके इसे आपको निपुण बनाना है, और वैसे भी हम लोगों ने चैनल खुले हुए हैं कि ये हमारे ARP जाते हैं या हमारे डाइट मेंटर्स जाते हैं तो ये देखें, टीचर से पूछें क्या आपका निपुण हो गया, सारे बच्चों को ये सुविधाएँ आ गई तो आप हमें बताओ ताकि हमने टेस्ट करके आपको हम घोषित कर सकें क्या आपका विद्यालय इस लक्ष्य को पूरा कर गया, तो उससे भी हमने खोले हैं अभी, तो हालांकि किसी ने अभी क्लेम किया नहीं, लेकिन 1-2 स्कूलों ने किया होगा, वो हम उसका हम लोग टेस्ट उसका करेंगे कि ये हो गया कि नहीं हो गया, तो हम इस कोशिश में हैं कि पहले जो क्लेम करते हैं उन्हें हम लोग टेस्ट करके पहले ही हमने घोषित कर दें, बाकी ये टेस्ट जब आएगा पहला रिजल्ट आएगा तो हमें पता लगेगा कि ये हमारा 39% बढ़ा है नहीं बढ़ा है घटा है या क्या हुआ, तो घटने का सीन तो नहीं है क्योंकि कोविड के बाद ही ये एग्ज़ाम हुआ था, कोविड से पहले होता तो शायद हम उससे घट जाते, तो अब ये देखना इसके बाद से फिर हमें देखना क्या अचानक ये अगर 39% से अगर ये 72% हमारे पास रिजल्ट आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कुछ गलतियां हैं, फिर हम उन्हें पूछेंगे कहाँ गलतियाँ हैं, या तो टीचर्स ने इसमें कुछ सही काम नहीं किया या फिर वो रिजल्ट हमारा कहीं कहीं दिक्कत है, अब रिजल्ट आएगा तो फिर हम उसमें देखेंगे कि कितना हमारा रिजल्ट 5% 10% अगर बढ़ा हुआ है तो ठीक है, वो तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें जो अब लोग हम लोगों ने टेस्ट लिया था, इसमें कक्षा 1, 2 और 3 में सिर्फ भाषा और गणित का टेस्ट लिया हमने, और 4, 5 में भाषा गणित और इंग्लिश का हमने टेस्ट लिया, 6वीं 7वीं 8वीं में भाषा गणित इंग्लिश और विज्ञान का टेस्ट लिया, तो इसमें पता लगेगा कि हम कितना डेवलपमेंट जो आएगा तो फिर हम उसके अनुसार से देखेंगे। बहुत ज़्यादा रिजल्ट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में लूप होल है। लूप होल क्या हो सकते हैं, टीचर ने ठीक से ईमानदारी से काम नहीं किया, क्योंकि एक दो तीन के बच्चों को जैसे भाषा में उनको वो मार्कशीट भरनी नहीं थी, बच्चे को पढ़ना था, कुछ उसमें चीज़ें दी हुई थी, तो वो टीचर्स ने देखा कि बच्चा पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ रहा, अगर पढ़ ले रहा है तो उसने टीचर्स ने फिर उसकी उम्र सीट में राउंड कर दिया, नहीं पढ़ पा रहा है तो उसने खाली छोड़ दिया, तो मतलब वो बच्चा अभी उस योग्य नहीं है। तो पहले दूसरे तीसरी का उम्र सीट टीचर्स को भरना था, इसलिए भरना था कि अब बच्चे को पढ़ना है तो बच्चा उसे कैसे भरेगा, आप कैसे जाने। तो वो अब जैसे तीसरी का लक्ष्य हम भाषा का कुछ देखे तो इसमें कुछ लिखा हो, जैसे हम पहली में देखे तो पांच सरल शब्दों से बने वाक्य पढ़ लेते हैं, तो अब वाक्य पढ़ लेता है तो टीचर्स ने उसे राउंड कर दिया, तो वो जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद फिर हम लोग देखें कहाँ है। तो अगर 5% हमें उम्मीद है कि 5% या 6% बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो फिर दिक्कत का काम है, फिर आगे फिर हम लोग उस लाइन पे काम करेंगे। क्योंकि ये जो पिछले साल सर्वे हुआ था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने अपने आदमी लगाए थे, सारी चीज़ें लगाया था, सीबीएसई ने लगाए थे, फिर इन्वेस्टिगेटर लगे थे, पर्यवेक्षक लगे थे, प्रशासन के लोग लगे थे, तो वो टेस्ट बहुत सही हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस लाइन तो हमारा ठीक है, बेस लाइन के ऊपर हम कितना बढ़ रहे हैं, कितना स्पीड से बढ़ रहे हैं, वो फिर आने के बाद पहला टेस्ट आएगा, तब फिर हमें अपनी सफलता का अंदाज़ा होगा कि हम ठीक लाइन पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, या हमें कहीं सिस्टम में हमारी कमियां जिसे दूर करने हैं। तो पेपर में तो हमें कुछ नहीं, क्वालिटी तो हमारी जनरली हम लोग मान के चलते हैं कि अप टू मार्क हमारी क्वालिटी बच्चों की नहीं है, तो क्वालिटी तो खराब है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगभग आप कहीं स्कूल में जाओगे आप देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम अब नहीं है, बट फर्नीचर्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं, बिजली भी है, पानी भी है, टॉयलेट भी हैं, अच्छी बिल्डिंग भी है, सारी चीज़ें हैं, बाउंड्री वॉल भी है, सारे आपको पैरामीटर्स मिले। लेकिन बच्चों से जब बात करोगे तो फिर पता लगता है कि कितना बच्चों को जो जितना आना चाहिए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग उतना है या नहीं है। तो वो अब उस पर अब गवर्नमेंट ने फोकस किया, हम लोगों ने फोकस किया है, तो मेरे समझ से अब इम्प्रूवमेंट होगा। और जो लक्ष्य दिया हुआ है अभी तक हमें लक्ष्य तो कोई ऐसा स्पेसिफिक लक्ष्य नहीं है कि एनुअल लक्ष्य दिया, निपुण का लक्ष्य में हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस तो हम इसी पे किए हुए हैं इस समय कि निपुण हमारा जिला बन जाया, उसमें अवार्ड अवार्ड की भी हमारे विभाग ने घोषणा कर रखी है, तो अभी हमें 2025-26 तक पूरा करना है और सिस्टमेटिकली पूरा करना है, तो हम लोग का फोकस तो इस समय इसी पे है। तो एनुअल तो इस पे है नहीं, लेकिन तीन महीने बाद जब हम क्वार्टरली करेंगे, 4 महीने बाद जब करेंगे तो हम देखेंगे कि हम कितने सफल हुए और इसे रिजल्ट भी आएगा।
सर और कुछ है जो आपको बताना है, कुछ भी डाइट के बारे में?
नहीं, डाइट के बारे में कोई भी चूचे आप बताएं तो आपको बाद में भी सवाल आए तो बाद में भी आप हमसे पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है, अभी तो 2-3 दिन आप लोग यहाँ पे हो। लेकिन अभी भी डाइटों में जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले ये थी कि लेक्चरर्स नहीं थे, हमने यहाँ से लिया, हमने वहाँ से लिया, थोड़े लिया, ज़्यादा लिया, जो भी था, लेकिन अब हमारे लेक्चरर्स हो गए इसमें। अब तो एक तो प्री सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग और इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग अब ठीक हो गई, बाकी अब हमारे पास जैसे माइक्रो रिसर्च है या शोध का काम है, अब ये शुरू होगा और जो भी एकेडमिक सपोर्ट हमें देना है देता, जैसे हम ARP की बैठक करते हैं तो हम उसमें कहते हैं कि अगर किसी टीचर्स को किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको डायरी भी बनानी है, उन्होंने अपनी पाठ योजना भी बनानी है, कहीं कोई दिक्कत आ रही तो आप हमसे बताओ ताकि हम उसके लिए कोई कन्वर्सेशंस कर सकें, नहीं होगा तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं, भाई बुलाने की जरूरत नहीं है टीचर्स को, कोई चीज़ें बतानी है तो हम सारे टीचर्स को किसी ऐप के माध्यम से जोड़ के हम उन्हें बता सकते हैं। तो टीचर्स हमारा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए वो अभ्यस्त हो गया, वो चीज़ें हम दूर कर सकते हैं। बाकी थोड़ी सी जैसे डाइट में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, जैसे लेबोरेटरीज की प्रॉब्लम है, भाषा की कोई लैब नहीं है, साइकोलॉजी लैब देखोगे तो अभी वो डेवलप नहीं है, अभी हम लोग अपनी थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि लाइब्रेरी और साइंस की लैब हम लोग डेवलप कर सकें, बाकी और भी चीज़ें हम लोग कर सकें। अभी इनके साथ मिलकर हम लोग एक दूरस्थ ब्लॉक जो है हस्तिनापुर, सबसे दूर का ब्लॉक है, उसको हम लोगों ने फोकस किया कि सबसे दूर का ब्लॉक है तो उस पर जरा फोकस करके इसको सबसे पहले निपुण बनाने का काम हम लोगों का है। कोशिश करेंगे कि हम लोग 2026 का इंतजार न करें बल्कि 23-24 तक हम उन्हें पूरे ब्लॉक को हम लोग उसे निपुण बना है, तो ये लोग भी लगे हुए हैं, हम लोग भी अब फोकस उसमें डाल रहे हैं, चूँकि दूर का ब्लॉक है तो थोड़ा जनरली थोड़ा सा निगलेक्ट होता है, तो हम यहाँ पे पास हैं तो हम लोग उसे चयन किए हुए हैं। बाकी 10 विद्यालयों में स्पेशली ये लोग काम कर रहे हैं, तो उनका हम लोग देखेंगे सबसे पहले उन्हें बनाने की है, तो कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम लोगों का जिला जो है निपुण हो जाए। बाकी ठीक है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम धीरे धीरे, अभी हमें 20 लाख रुपए मिले, हम लोग कुछ काम करेंगे, कुछ और ये हमें धनराशि अलग से देने वाले हैं तो वो भी हम लोग उसका काम करेंगे। हमारे पास क्लासरूम की कमी है, क्लासरूम हमने मांगा है इनसे कि हमें कम से कम 2-3 क्लासरूम और चाहिए, तो अब उसकी धनराशि मिल जाएगी तो हम क्लासरूम भी हम लोग बनाएंगे। जो 2 क्लासरूम हमारे उधर हैं जिसमें बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, 2 क्लासरूम एक पुरानी सामने बिल्डिंग में हम लोगों ने ठीक ठाक करा के एक एस्टेब्लिश इसमें किया हुआ, क्योंकि बिल्डिंगें हमारे पास प्रशासनिक बिल्डिंग यही है नहीं, बाकी तो हमारे पास पुरानी बिल्डिंग है जिसे हम लोग मेंटेन करा के चला रहे हैं। हमारे पास एक छोटा सा हॉल है, मीटिंग हॉल है, वो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को जो ट्रेनिंग सेंटर हमारी बिल्डिंग बनी है जिसमें बैठते हैं, ट्रेनिंग सेंटर के नाम पर बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन वो नाम ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें ट्रेनिंग काम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कमरे बड़े छोटे हैं, शायद आपने देखा होगा, उसमें हम कोई बच्चों को बैठा के कोई ट्रेनिंग नहीं कर सकते, उसमें तो हम काउंसलिंग कर सकते हैं
जी सर।
तो ट्रेनिंग सेंटर की हमारी बिल्डिंग है तो बहुत छोटी है, तो अब जो मैं बन गया था वो था, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने डिमांड करी है, उम्मीद है कि हमें मिल जाएगा। कैंपस वैम्पस भी हम लोग ठीक कर रहे हैं, कुछ पुरानी अबैंडन बिल्डिंगें हैं इसको भी हम लोग डिमोलिश कराने की कोशिश कर रहे हैं कि डिमोलिश हो जाए तो हमारा कैंपस थोड़ा सा ठीक हो जाए। बाकी आपको कुछ पूछना हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच सर।